मुख्य समाचारों में वृद्ध देखभाल शाही आयोग ने गवर्नर जनरल को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। विक्टोरिया में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर तेजी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार अनीता बरार के साथ। वृद्ध देखभाल शाही आयोग ने अंतिम रिपोर्ट गवर्नर जनरल को सौंप दी है, लेकिन इसे अगले सप्ताह तक ही सार्वजनिक किया जाएगा। 2 साल तक चली इस जांच में उपेक्षा और कुप्रबंधन की कहानियां सुनने को मिली। इसकी अंतरिम रिपोर्ट में प्रणाली के पूर्ण रूप से सुधार की सिफारिश की गई है। ये क्षेत्र जो मुख्य रूप से राष्ट्रमंडल द्वारा वित्त पोषित है, इसमें महामारी के दौरान और अधिक कमियां और जांच में वृद्धि हुई। कोविड-19 से 685 वृद्ध देखभाल निवासियों की मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि रिपोर्ट गंभीर होने की संभावना है।
This Royal Commission, I think, will identify serious and disturbing issues that are a product of decades. And it's important that I think the government is then supported by the parliament right across all parties and we get on with the things that we need to do.
Victoria में आज आधी रात से कोविड-19 प्रतिबंध कम हो रहे हैं। मास्क केवल सार्वजनिक परिवहन और सुपरमार्केट और अस्पतालों जैसे अन्य उच्च जोखिम सेटिंग में आवश्यक होंगे। 30 लोगों को घरों में और 100 लोगों को बाहरी समारोहों में अनुमति दी जाएगी। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज का कहना है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक लोगों को काम के स्थल पर लौटने की अनुमति दी जाएगी।
We will be able to have 75% of both public and private sector workers back to the office. That is very important in terms of retail trade, hospitality, food and beverage, that whole part of the economy. And not just for the CBD, as important as that is, but in lots of different suburban locations as well, regional centres.
Victoria में 2 नए स्थानीय मामले सामने आए, लेकिन ये दोनों पहले से मौजूद मामलों के प्राथमिक करीबी संपर्क हैं और संगरोध में हैं। तस्मानिया पुलिस ने एक कथित पेडोफाइल नर्स की जांच कैसे की, इस बारे में एक आंतरिक समीक्षा से पता चला है कि औपचारिक रूप से उसकी जांच शुरू करने में 1 दशक लग गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस को आरोपों के बारे में बताया गया था कि जेम्स जेफरी ग्रिफिन 2009 की शुरुआत में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, लेकिन 10 साल बाद तक जांच शुरू नहीं की गई थी जब तक एक कथित पीड़ित द्वारा औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपों के बारे में पुलिस को औपचारिक शिकायत के बाद कार्यस्थल लॉन्सेस्टन जनरल अस्पताल को सूचित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय लग गया। श्री ग्रिफिन ने कई बाल यौन अपराधों के आरोप लगने के बाद 2019 के अंत में खुद की जान ले ली थी। तस्मानिया के प्रीमियर पीटर गुडविन ने कहा है,
the information that's provided in the outcomes report. Offer my deepest and most heartfelt apology to all victims of past crimes that have occurred in relation to agencies of the state where any agency may not have handled information appropriately. There is always room for improvement. There must always be. For there is no place for complacency.
Federal Labor सांसद मार्क बटलर का कहना है कि ये असाधारण बात है कि राजनेताओं को संसद में होने वाले आपराधिक आचरण की रिपोर्ट में देरी न करने के लिए पुलिस द्वारा चेतावनी दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस आयुक्त ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को समय पर रेफरल के महत्व पर जोर देते हुए लिखा है कि देरी से रिपोर्ट करने से साक्ष्य का नुकसान हो सकता है या उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। पूर्व लिबरल कर्मचारी ब्रिटनी हिंगिस का आरोप है कि 2019 में संसद भवन में एक सहकर्मी द्वारा उनका बलात्कार किया गया था। श्री बटलर ने 9 नेटवर्क को बताया कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि अधिकारियों को इन मुद्दों के बारे में सूचित किया गया है।
Extraordinary that we would need to be told that we'd have to report criminal activity in the nation's parliament. I mean, we've had the shocking revelation of a rape being committed in the ministerial wing of the parliament, only 50 or 60 metres from the Prime Minister's office 2 years ago, and the perpetrator getting away with it.
यौन उत्पीड़न के बारे में जानकारी या सपोर्ट के लिए 1-800-RESPECT यानी 1-800-737-732 पर संपर्क करें। लापता सिडनी महिला मेलिसा कैडिक के अवशेष न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण तट पर पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन द्वारा उनके डोवर हाउस के घर पर सर्च वारंट जारी करने के एक दिन बाद पिछले साल नवंबर में 49 वर्षीय ये महिला गायब हो गई थी। 60 से अधिक निवेशकों से लाखों डॉलर चोरी करने के लिए इस वित्तीय विश्लेषक की जांच की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर मिक विलिंग का कहना है कि रविवार 21 फरवरी को थाथरा के पास पानी में एक विघटित पैर पाया गया था और ये सुश्री कैडिक के एक डीएनए नमूने से मेल करता है।
Exactly how Melissa came to enter the water is still a mystery and will be subject of ongoing investigations by the strike force team. And police have always kept an open mind in relation to what the circumstances were for her disappearance, including the fact that Melissa may have taken her own life. However, a definitive decision in relation to the manner, time and cause of death is a matter for the coroner.
मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और सपोर्ट के लिए लाइफलाइन को 131114 या बियॉन्ड ब्लू के साथ 1-300-224636 पर संपर्क करें। महारानी एलिजाबेथ का कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने का सकारात्मक अनुभव रहा और वो दूसरों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। क्वीन और प्रिंस फिलिप को पिछले महीने विंडसर कासल में एक घरेलू चिकित्सक द्वारा इसकी पहली खुराक दी गई थी। रानी का कहना है कि जो लोग टीका से इनकार करते हैं उन्हें खुद के बजाय अन्य लोगों के बारे में सोचना चाहिए।
Once you've had the vaccine, you have a feeling of, you know, you're protected, which is, I think, very important. And as far as I can make out, it was quite harmless. It was very quick. And I've had lots of letters from people who've been very surprised by how easy it was to get the vaccine. And the jab didn't hurt at all.
भारत ने कल बृहस्पतिवार को कहा है कि चीन के साथ पीछे हटने के समझौते के तहत देश ने अपनी कोई जमीन नहीं खोई बल्कि एक तरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव के प्रयास को रोकने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी की व्यवस्था लागू की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की स्थिति और साझा रूप से पुनः तैनाती को लेकर कोई बदलाव नहीं आया है और पीछे हटने की प्रक्रिया को गलत ढंग से पेश नहीं किया जाना चाहिए। लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र में पीछे हटने की प्रक्रिया के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि वास्तु स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के बयान में अच्छी तरह से स्थिति स्पष्ट की गई है। इसमें मीडिया में आई कुछ गुमराह करने वाली और गलत टिप्पणियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। जैसा कि विदित है, दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में कई महीने तक जारी गतिरोध के बाद उत्तरी और दक्षिणी पेंगोंग क्षेत्र से अपने अपने सैनिकों और हथियारों को पीछे हटाया है। अभी कुछ मुद्दे बने हुए हैं। और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कोविड के 16,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 100 से अधिक लोगों की जान गई है। हालांकि ये आंकड़े कल गुरुवार की तुलना में कम हैं। भारत में संक्रमण के कुल मामले 1,10,63,491 पर पहुंच गए हैं। देश में अब तक कोरोना के चलते 1,56,000 लोगों की जान गई है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 78 सेंट और भारत के 57.35 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, एएफएल में अगले महीने एमसीजी में 50,000 लोगों को सीजन के शुरुआती मैच में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। ये मैच रिचमंड और कार्टन के बीच 18 मार्च को होगा। महामारी की वजह से ये संख्या 50% की सीमा पर है। डॉकलैंड स्टेडियम में संख्या 29,000 से कम होगी। AFL के ट्रेविस ऑल्ट का कहना है कि फुटी प्रशंसकों के लिए ये एक अच्छी खबर है और सब लोग मैच में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।
Something they didn't get the opportunity to do last season, and we know how important that is for this state. But beyond that, it's such an important economic driver for Melbourne in particular, and a lot of people's jobs depend on it. And so we're very grateful for that support. We look forward to working with the government between now and round one in the anticipation of 50,000 people at the MCG on March 18.
और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में मुख्यतः धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।